स्वागत है आपका दिनभर में। आज है 24 मई दिन बुधवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने दिया इस्तीफा। गठबंधन समझौते के तहत नेपाली कांग्रेस से होगा प्रधानमंत्री।
म आजै र अहिले नै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामाको घोषणा गर्दछु र म यहाँबाट सिधै।
म्यान्चेस्टर हमले पर ब्रिटेन ने कहा अकेले काम नहीं कर रहा था हमलावर, तीन लोग गिरफ्तार। नरेंद्र मोदी सरकार के तीन सालों में विदेश नीति के मामले में कितना कामयाब रहा है भारत, सुनिएगा एक विशेष रिपोर्ट। और दुनिया जहान में आज सुनिएगा ईरान में दूसरी बार राष्ट्रपति बने हसन रूहानी के सामने क्या है चुनौतियाँ।
मैं समझता हूँ कि ये बहुत हिस्टोरिक विक्ट्री है। ईरानियन आम जनता ने तय कर लिया है कि वो मॉडरेशन पे ही कायम रहेंगे।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप सोनी से। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल उर्फ प्रचंड ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रचंड लगभग 9 महीने पहले दूसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे। नेपाली टीवी चैनलों पर इस्तीफे की घोषणा करते हुए प्रचंड ने अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया और कहा कि उनका इस्तीफा पिछले साल अगस्त में सत्ता में शामिल होते समय गठबंधन में शामिल दलों के साथ बनी सहमति पर आधारित है। ब्रिटेन की गृह मंत्री एम्बर रड ने इस बात की आशंका जताई है कि मैनचेस्टर में आत्मघाती हमला करने वाले एक से अधिक व्यक्ति रहे होंगे। सुरक्षा एजेंसियों ने मैनचेस्टर में आत्मघाती हमला करने वाले संदिग्ध हमलावर की पहचान सलमान आब्दी के रूप में की है। सलमान आब्दी के बारे में ब्रिटेन की गृह मंत्री ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियाँ उसे पहचानती थीं। बीबीसी संवाददाता के मुताबिक ये माना जा रहा है कि सलमान आब्दी ने जिस बम में धमाका किया वो बम किसी और ने बनाया था। जांचकर्ता इस बात की भी पड़ताल कर रहे हैं कि सलमान आब्दी ब्रिटेन आने से पहले सीरिया के दौरे पर भी गया था। मैनचेस्टर धमाके के 2 दिन बाद भी धमाके में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने न्यूयॉर्क में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, मेरा हृदय और आप भी यही महसूस कर रहे होंगे उन लोगों के साथ है जो इस हमले में हताहत हुए। मैं कहना चाहूंगी मेरा देश खौफ के आगे हमेशा खड़ा होगा, अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे नहीं हटेगा और उनके साथ मिलकर काम करेगा जो चरमपंथ का मुकाबला कर रहे हैं। ये थी अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। एशियाई देश ताइवान की सबसे बड़ी अदालत ने समलैंगिकों की शादी के पक्ष में फैसला सुनाया है। इसके साथ ही एशिया में कहीं पर समलैंगिकों को शादी की मंजूरी देने का ये पहला मामला है। ताइवान के मौजूदा कानून केवल स्त्री पुरुष के विवाह की इजाज़त देते हैं, लेकिन कोर्ट में इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई जिस पर यह फैसला आया। इस फैसले पर ताइवान के समलैंगिकों ने खुशी जताई और राजधानी ताइपे स्थित संसद परिसर के बाहर जश्न मनाया। ताइवान की राजधानी ताइपे में समलैंगिकों का जश्न। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की रफ्तार आने वाले सालों में सुस्त पड़ सकती है। इस आशंका से अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडी ने चीन की रेटिंग कम करके A1 से AA3 कर दी है। वर्ष 1989 के बाद ये पहला मौका है जब मूडी ने चीन की रेटिंग कम की है। इस पर चीन के वित्त मंत्रालय ने प्रतिक्रिया में कहा कि मूडी ने देश की आर्थिक चुनौतियों को बढ़ा चढ़ाकर बताया और आर्थिक सुधार की उसकी कोशिशों को कम करके आंका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोप फ्रांसिस से मुलाकात की है, जिसे वेटिकन ने सद्भावना से प्रेरित बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पोप फ्रांसिस से ये पहली मुलाकात है जिस पर वेटिकन ने द्विपक्षीय संबंधों के हिसाब से संतोष जताया है। वेटिकन से जारी एक बयान में मध्य पूर्व और ईसाई समुदाय की सुरक्षा के हवाले से कहा गया है कि ट्रंप और पोप फ्रांसिस ने शांति को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श किया। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। चीन के 2 नागरिकों को पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से अगवा किया गया है। पुलिस का कहना है कि चीन के ये दोनों नागरिक संभवतः मैंडरिन भाषा के शिक्षक थे, जिन्हें बंदूक की नोक पर एक गाड़ी में जबरन बिठाकर अगवा किया गया। चीन इस इलाके में बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का निर्माण कर रहा है। इस इलाके में पृथकतावादियों के अलावा इस्लामी चरमपंथी भी सक्रिय हैं। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिनभर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com, मोबाइल और फेसबुक पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। जैसा आपने अभी अभी समाचारों में सुना, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले साल अगस्त में गठबंधन सहयोगी नेपाली कांग्रेस के साथ सीपीएन माओइस्ट सेंटर ने सत्ता में साझेदारी के लिए जो समझौता किया था, उसके मुताबिक स्थानीय निकाय के पहले चरण के चुनाव के बाद उन्हें इस्तीफा देना था। 14 मई को पहले चरण के स्थानीय निकाय के चुनाव हुए और दूसरे चरण के चुनाव जून महीने में होने हैं। इस्तीफे से पहले अपने भाषण में प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा,
नेपाली कांग्रेससँग भएको समझदारी अनुसार नै म अगाडि बढ्दै छु।
मैं नेपाली कांग्रेस के साथ हुई सहमति के आधार पर आगे बढ़ रहा हूँ। मैं अतीत के उदाहरणों की तरह सत्ता छोड़ते समय गुस्से और खींच का इजहार करने की प्रवृत्ति को खत्म करने जा रहा हूँ। मैं देश और देशवासियों के कल्याण के लिए एक सांसद और नागरिक के रूप में काम करना जारी रखूंगा। अब मैं राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपने जा रहा हूँ। ये थे नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड के शब्द। प्रचंड इस्तीफा देंगे या नहीं, इसे लेकर कई दिनों से नेपाल में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई थीं। विपक्षी पार्टी सीपीएन यूएमएल नहीं चाहती थी कि स्थानीय निकाय चुनाव के बीच सत्ता में परिवर्तन हो। थोड़ी देर पहले मैंने बीबीसी नेपाली सेवा के अपने सहयोगी सुरेंद्र फुयाल से फोन पर बात की और आज के घटनाक्रम की जानकारी ली।
जी, इनका योजना यही था प्रचंड का कि वो पहले चरण का स्थानीय चुनाव कराते ही वो राजीनामा देंगे। उनका भद्र सहमति यही था शेर बहादुर देउवा के साथ, नेपाली कांग्रेस के साथ। तो उन्होंने कहा कि उसी के मुताबिक उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वो इस्तीफा देने राष्ट्रपति के यहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने अपना समझदारी, अपना वचन पूरा किया।
अब जो नेपाल की राजनीति है, चूंकि काफी उथल पुथल वाली राजनीति रही है पिछले अगर हम 2-3 साल का इतिहास देखें, तो अब ये राजनीति कैसे चलेगी?
अब ये राजनीति में सीधा तौर से देखा जाए तो शेर बहादुर देउवा नेपाली कांग्रेस के जो है वो प्रधानमंत्री चुनेंगे। ये मिलीजुली जो सरकार है, कोलिशन गठबंधन सरकार, ये ऐसे ही चलेगी अगर इसका नेतृत्व परिवर्तन होगा। और इनके कांध में बहुत बड़े जिम्मेवारी होंगे, चुनौती भी होंगे। वो है दूसरा चरण का स्थानीय चुनाव सम्पन्न करना, उसके बाद प्रादेशिक चुनाव करवाना और उसके बाद अगले साल के जनवरी फरवरी तक नेपाल का संसद का चुनाव करवाना। तो इसके साथ साथ संविधान संशोधन भी करना है। मधेशी दल के बीच जो हुए सहमति है, हालांकि मधेशी दल भी गठबंधन सरकार के हिस्सेदार है, समर्थक है, तो बहुत सारे चुनौती होंगे आने वाले सरकार के लिए।
ये जो सीपीएन यूएमएल जो विपक्षी दल है, वो क्यों विरोध कर रही थी इस जो सत्ता हस्तांतरण था उसका?
वो कह रहा है कि पहले वो स्थानीय चुनाव दूसरा चरण का जो करना बाकी है उसको भी खत्म करके फिर इस्तीफा दे दे, उसका मांग यही था। ये एमाले का कहना है कि चुनाव सुनिश्चित होना चाहिए, उसके लिए वो इसी तरह से दबाव देता आ रहा है। और वो जिस तरह से मधेशी दल के बीच सहमति हुआ है ये सरकार का, उसको कार्यान्वयन सीधे हिसाब से करवाने के लिए भी वो राजी नहीं है। वो कह रहा है कि वो देश के हित में नहीं है, देश के दीर्घकालीन हित में नहीं है, इसलिए थोड़ा सावधान रहना चाहिए। यही एमाले कहता आ रहा है।
मधेशी ये मांग करते रहे हैं कि संविधान में उनको ज्यादा से ज्यादा उनको अधिकार मिले। अभी जो स्थानीय दूसरे चरण के चुनाव होने हैं, उसमें मधेशियों को क्या फायदा या नुकसान होने की संभावना है?
वो अगर चुनाव में जाएंगे तो उनका भी कुछ सीट आ सकती है और वो भी अपना पकड़ बना सकती है, मगर ये माहौल अभी तक नहीं बना है और वो उनका बार्गेनिंग अभी भी चल रहा है। तो देखना बाकी है कैसे वो बार्गेनिंग करेंगे और चुनाव में जाएंगे और राजनीतिक अपना भविष्य सुनिश्चित करेंगे। वो उनके लिए भी बहुत सारे चुनौती आगे है।
ये थे नेपाली सेवा के हमारे सहयोगी सुरेंद्र फुयाल। ब्रिटानी सरकार का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि मैनचेस्टर धमाके का आत्मघाती हमलावर सलमान आब्दी अकेले काम नहीं कर रहा था। मैनचेस्टर में सोमवार रात हुए हमले में 22 लोग मारे गए थे और 60 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। ब्रिटानी प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने मैनचेस्टर के बाद और हमले होने की आशंका जताई है। ब्रिटेन में खतरे के स्तर को पिछले एक दशक में सबसे ऊंचा यानी क्रिटिकल स्तर का कर दिया गया है और देश भर में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। मैनचेस्टर हमले के सिलसिले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरी जानकारी के साथ दिव्या आर्य।
मैनचेस्टर हमले के बाद ब्रिटेन की प्रमुख इमारतों और आयोजनों पर सेना के जवान तैनात कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने इस अभूतपूर्व कदम का ऐलान किया। उधर बीबीसी को मिली जानकारी के मुताबिक हमले में इस्तेमाल हुआ बम आत्मघाती हमलावर सलमान आब्दी के द्वारा नहीं बल्कि किसी और के द्वारा बनाए जाने की संभावना है। गृह सचिव एम्बर रड ने बताया कि आब्दी के बारे में खुफिया एजेंसियों को कुछ हद तक जानकारी थी।
It was a devastating occasion. It was more sophisticated than some of the attacks we've seen before. ये बहुत घातक हमला था। हमारे सामने हुए कई अन्य हमलों के मुकाबले बेहद पेचीदा, इसलिए ये लगता है कि इसे उसने अकेले अंजाम नहीं दिया होगा। पुलिस और खुफिया एजेंसियां हर सुराग की पड़ताल कर रही हैं, ताकि पूरी जानकारी मिल सके और खतरा कम कर सबको सुरक्षित रखा जा सके।
ब्रिटेन की गृह सचिव एम्बर रड के शब्द। ये भी सामने आया है कि सलमान आब्दी हमले से कुछ ही दिन पहले विदेश से ब्रिटेन लौटा था। आब्दी मैनचेस्टर शहर में पला बढ़ा, पर लीबियाई मूल का था। माना जा रहा है कि आब्दी के माँ बाप कई साल ब्रिटेन में रहने के बाद अब फिर लीबिया में रहने लगे हैं। जासूस आब्दी के सीरिया का दौरा करने की अपुष्ट खबरों की भी पड़ताल कर रहे हैं। फ्रांस के गृहमंत्री जेरर्ड कोलोम ने एक फ्रांसीसी टीवी चैनल से कहा कि आब्दी के इस्लामी चरमपंथी संगठन दाइश से संबंध होने की भी संभावना है।
मैं इसे ऐसे कहना चाहूँगा, अगर आप लीबिया जा रहे हैं जहाँ अलग अलग संगठन अलग अलग क्षेत्र में कब्जा जमाए हुए हैं, तो साफ है कि आप उन ताकतों के नज़दीक होंगे जो दाइश के करीब हैं और लीबिया पर अपना दबदबा कायम करना चाहती हैं।
फ्रांस के गृह मंत्री जेरर्ड कोलोम के शब्द। इस बीच डॉक्टरों का कहना है कि धमाके में घायल लोगों में से 20 को अब भी जान का खतरा बना हुआ है, इनमें ज्यादातर बच्चे हैं।
ब्यौरा सुना रही थी दिव्या आर्य। और अब भारत का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में मंगलवार को राजपूतों और दलितों के बीच हुई हिंसा के बाद अब भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि पुलिस ताज़ा हिंसक घटनाओं से इनकार कर रही है, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक पथराव और आगजनी की घटनाएं भी हुई हैं। फिलहाल स्थिति को सही तरीके से न संभाल पाने के कारण सहारनपुर के डीएम और एसएसपी को सस्पेंड कर दिया गया है। पूरी जानकारी के साथ लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र।
लखनऊ से पुलिस के आला अधिकारी सहारनपुर में कैंप किए हुए हैं। बावजूद इसके एक व्यक्ति को गोली मारने और कुछ दूसरे लोगों पर तलवार से हमले की खबरें दिन भर मीडिया की सुर्खियों में रहीं। हिंसक घटनाएं अब शब्बीरपुर गांव से आगे भी बढ़ गई हैं। राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था से लेकर कई जिलों तक के आला पुलिस अधिकारी सहारनपुर में हैं और दिन भर बैठके करते रहे, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण ही बनी हुई है। सहारनपुर के डीआईजी अशोक कुमार राघव बताते हैं।
देखिए, आज एक घटना अभी दोपहर में हुई है, एक लड़के को गोली मारी गई है, लेकिन वो सिटी क्षेत्र से देहरादून वाले रोड पर हुआ है। अब चूंकि लड़का ठाकुर है और यहाँ विवाद ठाकुर और जाटो में चल रहा है, ये अभी नहीं कहा जा सकता है कि वो ये घटना का उससे संबंध है। लेकिन
मंगलवार को भड़की हिंसा के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हैं। बुधवार को भी हिंसक घटनाएं होती रहीं। एक व्यक्ति को गोली मारने के अलावा कुछ लोगों पर धारदार हथियारों से भी हमले की खबरें हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि बुधवार को हिंसा की कोई बड़ी वारदात नहीं हुई। पुलिस ने अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को बीएसपी नेता मायावती ने शब्बीरपुर गांव का दौरा किया था। उनके वहां जाने से पहले और लौटने के बाद हिंसा बढ़ गई थी। मायावती ने हिंसक घटनाओं के लिए राज्य की बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया था और अब बीजेपी मायावती को ताजा हिंसा के लिए जिम्मेदार मान रही है। कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा कहते हैं,
अमन और शांति स्थापित हुई थी, लेकिन अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बहन मायावती जी वहां गई और उसके बाद फिर एक नौजवान की वहां हत्या हुई है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं और इसमें जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
फिलहाल कुछ ही दिन पहले सहारनपुर आए जिलाधिकारी एनपी सिंह और एसएसपी सुभाष चंद्र दुबे को सरकार ने उनके पदों से हटा दिया है और लखनऊ से आए पुलिस के आला अफसर सहारनपुर में ही कैंप कर रहे हैं। इसके अलावा आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में पुलिस बल और पीएसी को सहारनपुर बुलाया गया है। इतनी भारी भरकम पुलिस बल की तैनाती के बावजूद सहारनपुर की तनावपूर्ण स्थिति न सिर्फ सरकार के लिए बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी तनाव का कारण बनी हुई है। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
3 साल पहले 26 मई को नरेंद्र मोदी ने आम चुनाव में भारी जीत के बाद भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उनकी ताजपोशी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ समेत पड़ोसी देशों के कई नेता शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक कई देशों की यात्राएं की। इससे ऐसा लगने लगा कि भारत की विदेश नीति में एक नई ऊर्जा आई है और दुनिया में देश का कद बढ़ गया है। 3 साल बाद अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि इन विदेश यात्राओं से क्या कुछ हासिल हुआ है। जुबैर अहमद की खास रिपोर्ट सुनिए।
ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश में भारतीय मूल के समर्थक। पिछले 3 सालों में अब तक प्रधानमंत्री ने 45 देशों का दौरा किया है और उन्होंने हर विदेशी यात्रा में भारतीय मूल के लोगों के साथ जुड़ने की पूरी कोशिश की है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में विदेशी मामलों के जानकार स्वर्ण सिंह के अनुसार विदेश नीति में ये प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
मुझे लगता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि जो प्रधानमंत्री मोदी की पिछले 3 साल में रही विदेश नीति को लेकर है, वो उन्होंने जो डायस्फोरा से कनेक्ट बनाया है, वो एक नया पहलू है भारत की विदेश नीति को सफलता दिलाने की तरफ।
3 साल पहले सत्ता में आने के बाद से अब तक नरेंद्र मोदी हमेशा हरकत में रहे हैं, विदेश नीति में इससे गति आई है, लेकिन क्या इससे भारत को कोई भारी फायदा हुआ है? स्वर्ण सिंह कहते हैं इन दौरों के कुछ ऐसे फायदे हैं जो दिखते नहीं और कुछ ऐसे जो दिखते हैं।
विजिट्स की बात करते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं कि उसके जो आउटकम्स हों वो सारे टेंजिबल्स हों। बहुत सी चीज़ें टेंजिबल्स हैं और बहुत सी चीज़ें इंटेंजिबल्स हैं। फिलहाल जो मैं पूरी तसल्ली से कह सकता हूँ वो ये कि विजिबिलिटी भारत की बढ़ी है और विजिबिलिटी बढ़ने में अपने आप एक फ़ायदा होता है।
कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर हैं तो तमिल बोलने वाले, लेकिन अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी और फ्रेंच फर्राटे से बोलते हैं, क्योंकि वो एक ज़माने में भारत के राजनयिक रह चुके हैं। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री सिर्फ मोदी मोदी सुनना चाहते हैं।
दुनिया भर घूमते हैं और क्या होता है कि उन्हीं के समर्थक पहुँच जाते हैं और मोदी मोदी कहते रहते हैं। अब मोदी मोदी कहलवाना ये क्या विदेश नीति बनती है क्या?
नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देशों के साथ रिश्तों को और भी मजबूत करने पर काफी जोर दिया है।
अफ्रीका एंड इंडिया आर टू ब्राइट स्पॉट्स ऑफ होप एंड अपॉर्चुनिटीज।
पिछले साल भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन में बोलते हुए नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि भारत और अफ्रीका वैश्विक अर्थव्यवस्था में आशा और अवसर के दो उज्जवल स्पॉट हैं। भारत को अफ्रीका का विकास या डेवलपमेंट पार्टनर होने पर गर्व है। ये सामरिक चिंता और आर्थिक लाभ से परे एक भागीदारी है। भारत ने अफ्रीका में बुनियादी ढांचों के विकास के लिए $15 अरब का फंड तैयार किया है, लेकिन कई विशेषज्ञ कहते हैं कि नरेंद्र मोदी दुनिया से कनेक्ट होने में कामयाब तो हो गए, लेकिन अपने पड़ोसियों को खुश न कर सके। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के समय जो पाकिस्तान, चीन, नेपाल और श्रीलंका के साथ संबंध में जोश देखने को मिल रहा था, अब वो गायब है। राजीव डोगरा भारत के राजनयिक रह चुके हैं, वो कहते हैं
कि सबसे बड़ी नाकामी या सबसे बड़ी परेशानी या सबसे बड़ी उलझन ना सिर्फ सरकार के लिए बल्कि भारत के लिए और मैं तो कहूँगा कि पूरे साउथ एशिया के लिए वो जो पिछले 70 साल से रही है वही अब भी है, वो है पाकिस्तान। ऐसा पड़ोसी है जो समझता ही नहीं, बाजी नहीं आता, मानता ही नहीं।
पाकिस्तान और चीन से संबंध खराब हैं, श्रीलंका भी चीन की तरफ ढलता जा रहा है, नेपाल के साथ रिश्ते काफी बुरे हैं और नेपाल भी चीन की तरफ झुकता जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि नेपाल के अलावा नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की जो सबसे बड़ी नाकामी समझा जा रहा है, उसी में उनकी सबसे बड़ी कामयाबी भी छिपी नजर आती है। जैसे कि राजीव डोगरा कहते हैं
जो एक सेल्फ इम्पोज चेंज थी इंडिया ने बांधे हुए थे अपने ऊपर, उनसे जो हम निकले हैं सबसे बड़ी उपलब्धि वही हुई है। और वो एक कोइंसिडेंस है कि दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट पैरेलल ट्रैक पे चली हैं और साथ साथ चली। एक तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना कुलभूषण यादव के लिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप था। दूसरा चाइना का OBOR में डिसीशन लेना कि वहाँ हम सॉवरेनिटी की वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते।
मई के महीने में इसका नज़ारा दो अलग अलग मौकों पर देखने को मिला। एक हेग जिनीवा में, जहां भारत ने पाकिस्तान को भारतीय विशेषज्ञों के अनुसार चारों खाने चित कर दिया। दूसरा बीजिंग में, जहां चीन के नेतृत्व में वन बेल्ट वन रोड कहे जाने वाले विशाल प्रोजेक्ट पर हुई बैठक जिसका भारत ने बहिष्कार किया। राजीव डोगरा के अनुसार नरेंद्र मोदी की नीति थोड़ी अलग है। प्रधानमंत्री ने भारत के हितों की सुरक्षा पर एक स्टैंड लिया है, एक लीडरशिप दिखाई है, लेकिन मणिशंकर अय्यर के अनुसार चीन और पाकिस्तान से बिगड़ते हुए रिश्तों के कारण भारत अपने पड़ोस में ही अलग थलग होकर रह गया है।
30 हेड्स ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट बीजिंग पहुंचे, वैसा ही 130 ममालिक वहां पहुंचे, 68 MOU साइन किए गए हैं BRI के सिलसिले में। अब हम रह गए एक तरफ और चीन सारी दुनिया को अपने साथ समेट रही है।
स्वर्ण सिंह भारत के पाकिस्तान और चीन से रिश्तों को बेहतर तरीके से यूं समझाते हैं।
चीन और पाकिस्तान के दोनों के साथ आप देखें कि हमारे जो रिश्ते हैं वो पिछले कुछ दिनों से एक रोलर कोस्टर राइड की तरह से चल रहे हैं। कभी तो बियर हग्स, स्माइल टुगेदर, फोटो अपॉर्चुनिटीज देखते हैं और कभी आप देखते हैं कि बहुत नाराजगी से एक दूसरे की तरफ हम बातचीत करते हैं।
स्वर्ण सिंह के अनुसार विदेश नीतियां पार्टियों के सत्ता में बदलने से फौरन नहीं बदल जाती। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पूर्व कांग्रेस सरकार से अलग नहीं है, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री ने रफ्तार जरूर भर दी है। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
ईरान में हाल ही में हुए चुनाव में उदारवादी माने जाने वाले हसन रूहानी लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान लंबे अरसे से पश्चिमी देशों के निशाने पर रहा है। हालांकि ईरान कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम हथियार बनाने के लिए नहीं बल्कि ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए है, लेकिन अमरीका समेत पश्चिम के देश ईरान के इन तर्कों से इत्तेफाक नहीं रखते। हसन रूहानी लगातार ये कोशिश करते रहे हैं कि पश्चिम के साथ ईरान के रिश्ते बेहतर हों। ऐसे में उनकी जीत के ईरान की घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए क्या मायने हैं, दुनिया जहान में मोहनलाल शर्मा ने यही पड़ताल की है।
दुनिया जहान।
تعداد آرای مأخوذه 41,220,000
ڈاکٹر حسن روحانی نے 2,35,49,616 ووٹ حاصل کیے۔ اس طرح وہ ایک بار پھر ایران کے عوام کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔
عنوان رئیس جمهور مردم عزیز ایران انتخاب شدن۔
یہ ہے حسن روحانی کے دوسری بار ایران کے راشٹرپتی چنے جانے کی گھوشنا، اور یہ ہیں ان کی جیت کے جشن میں ڈوبی آوازیں۔ پچھلے کئی ہفتوں سے پوری دنیا کی نگاہیں ایران پر تھیں، کیونکہ اس اسلامک دیش کو اس کا نیا راشٹرپتی ملنے والا تھا۔ دنیا جاننا چاہتی تھی کہ کیا ایران کی جنتا حسن روحانی کی دوبارہ تاج پوشی کرے گی یا پھر ابراہیم رئیسی کو ستاسین کرے گی، کیونکہ راشٹرپتی چنے جانے کے ساتھ ہی یہ بھی طے ہونے والا تھا کہ ایران کون سا چہرہ چننے والا ہے، اداروادی مدھیم مارگی یا پھر ابراہیم رئیسی کے ساتھ کھڑا ہو کر کٹر سوچ والا۔ لیکن اپنی اس جیت کے ساتھ ہی حسن روحانی نے اپنی سوچ کو بھی اپنے پہلے بھاشڑ میں بتا دیا۔
ملت بزرگ ایران، پیروز اصلی ان انتخابات شما ملت بزرگ هستید۔
ایران کے لوگوں، یہ جیت آپ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ جیت اسلام کی ویوستھا اور گڑتنترواد کے لیے ہے۔ یہ جیت آزادی کے لیے ہے اور ہمارے راشٹر کے ادھیکار کے لیے ہے۔ یہ جیت شانتی اور دوستی کے لیے ہے اور ہنسا کے خلاف ہے۔
پشچم ایشیا معاملوں کے جانکار قمر آگا بتاتے ہیں کہ روحانی کی اس ایتہاسک جیت کے معنی کیا ہیں، کیا اس سے ایران کے بھوشیہ کا چہرہ سامنے آ رہا ہے؟
بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہسٹورک وکٹری ہے۔ ایرانین عام جنتا نے طے کر لیا ہے کہ وہ ماڈریشن پہ ہی قائم رہیں گے۔ ایک اور ڈیسیزن ہے وہاں پہ جو بہت ہسٹورک ڈیسیزن بھی کچھ وقت سے پہلے ہوا تھا، جس کے تحت نیوکلیئر ڈیل دنیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ جو سائن ہوئی تھی، تو یہ اس کی بھی جیت ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ایران کا ایک قومی نظریہ اس بات کا اسٹریٹجک ڈیسیجن لگتا ہے مجھے نے لیا ہے کہ وہ اب سبھی دیشوں سے اپنے سمبندھ اچھے رکھیں گے، جس میں امریکہ بھی ہے۔
67 سال کے حسن روحانی ایران میں سدھار و پریورتن کا وعدہ لے کر پہلی بار 2013 میں راشٹرپتی پد پر ستاسین ہوئے تھے، اور 4 سال بعد وہ پھر سے اس کرسی پر قابض ہو گئے۔ روحانی کو شبد شلپی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ روحانی کڑوے فیصلوں کو میٹھی چاشنی میں ڈبو کر لیتے ہیں۔ ان کے 4 سال کے شاسن کال کی سب سے بڑی اپلبدھی 2015 میں ایران کا پشچمی دیشوں کے ساتھ پرمانو سمجھوتا تھا، جس کے تحت یورپ اور امریکہ سمیت سنیت راشٹر نے ایران پر لگے پرتبندھوں کو ہٹا لیا تھا۔ لیکن ایران کا ایک دھڑا امریکہ و پشچمی دیشوں کے ساتھ سمجھوتے کے خلاف کھڑا تھا، تو کیا اس سے اس دھڑے کو جھٹکا لگا جو کہ کٹر چھوی کی وکالت کرتا ہے؟ راکیش بھٹ ایران میں رہ چکے ہیں اور وہاں کی راجنیتی پر نظر رکھتے ہیں۔
اس کو صرف ہم سدھاروادی یا نرم پنتھی اور کٹر پنتھیوں کے بیچ ایک سنگھرش نہ سوچیں، کیونکہ ایران کا جو آنترک شکتی سنگھرش ہے وہ صرف سدھاروادی اور کٹر پنتھیوں کے بیچ ماتر ایک دارشنک ترک نہیں ہے، بلکہ نہت سوارتھوں اور وشیشادھکاروں کے ساتھ ساتھ ایک دھارمک ستہ پرتشٹان کے پربھتو کو سنرکشت اور سرکشت رکھنے کا سنگھرش ہے۔ حالانکہ روحانی جیت تو گئے، لیکن اس جیت کے پشچات اگر ہم یہ گھوشت کر دیں کہ اب سدھارواد وجئی ہو گیا ہے، یہ سینا جلدی ہوگا، ابھی تو سیدھی بھرنت باقی ہے۔
you ईरानी राष्ट्र राज्य अपनी व्याख्या धार्मिक लोकतंत्र के नाम से करता है, जिसकी धुरी सर्वोच्च इस्लामी धर्मगुरु के इर्द गिर्द घूमती है। रूहानी के प्रतिद्वंदी 56 साल के इब्राहिम रईसी कट्टर न्यायविद के रूप में जाने जाते हैं। सर्वोच्च धार्मिक नेता सैयद अली खामनेई से उनकी निजी निकटता और ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का समर्थन उन्हें समाज के खास वर्ग का प्रतिनिधि बनाता है। राकेश भट्ट से मैंने पूछा, अब आगे क्या?
1979 की क्रांति के बाद से ईरान में जब भी कट्टरपंथियों ने एक राजनीतिक लड़ाई हारी है, तब तब उन्होंने चुनी सरकारों से बदला लिया है और इन सरकारों के सामने बहुत विकल्पहीन चुनौतियां खड़ी की हैं। उनमें से जो प्रमुख नाम है वो है रेवोल्यूशनरी गार्ड का। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स अपने आंतरिक प्रभुत्व को पुनः स्थापित करने के लिए अधिक टकराव की स्थिति पैदा करेंगे, जैसे वे इराक में, सीरिया में, यमन और मध्य पूर्व में ईरान के हस्तक्षेप के लिए जो साहसी सैनिक कार्रवाई को और तेज कर सकते हैं और जिसका कंट्रोल राष्ट्रपति के पास नहीं होता है, वह ईरान के सर्वोच्च धार्मिक गुरु के हाथ में होता है।
उधर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार विदेश दौरे पर निकले डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब में मुस्लिम देशों के नेताओं से बात करते हुए ईरान पर निशाना साधा। ट्रंप ने कहा, ईरान को परमाणु हथियार रखने की कभी भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
That Iran must never be allowed to possess a nuclear weapon, never ever, and must cease its deadly funding, training and equipping of terrorists and militias, and it must cease immediately.
अमेरिका का कहना है कि चरमपंथ में ईरान की संलिप्तता हर तरफ देखी जा सकती है। जवाब में हसन रूहानी ने ट्रंप के इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि आतंक के खिलाफ कौन लड़ रहा है? सीरियाई, इराकी, ईरानी, हिजबुल्ला और रूस, तो बाकी क्या कर रहे हैं?
किया बा टेररिस्ट हा जंगीदन, सूरी हा, इराकी हा, ईरानी हा, उन्हाई के लाजम बूज मुस्तशारी कनन, हिजबुल्ला व दर किनारे इनहा रूसिये, बगिये चिकार करनन।
अब सवाल ये है कि जिस तरह से कुछ मुस्लिम देश एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं और ट्रंप यानी अमेरिका के साथ उनके रिश्ते फिर से लिखे जा रहे हैं, आने वाले दिनों में कितनी बड़ी चुनौती रूहानी के लिए है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में कायदे आजम यूनिवर्सिटी के डॉक्टर कदील अब्बास कहते हैं,
जो एक नई ग्रुपिंग हो रही है, इसमें एक तरफ ईरान, रूस और चीन खड़े हैं और दूसरी तरफ सऊदी लेड इस्लामिक वर्ल्ड में कहूंगा, जो रीजनल सिचुएशन है शाम की, बहरीन की और यमन की खासतौर पर, इस ईरान के जो कदामत पसंद हल्के हैं वो तो ईरान का एग्रेसिव रोल चाहते हैं शाम के अंदर भी और यमन और बहरीन में भी, जबकि रूहानी साहब सॉफ्ट पॉलिटिक्स के जरिए वहां पर ना चाहेंगे, लेकिन अब जो नई ग्रुपिंग बनी है इसमें रूहानी साहब के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ईरान की राय आमा को मुतमिन करना और दूसरी तरफ इंटरनेशनल लेवल पर ईरान का जो बेहतर होता हुआ इमेज है उसको बरकरार रखना या आगे बढ़ाना।
अब चूंकि हसन रूहानी दूसरी बार सत्तासीन हुए हैं तो ये तो तय है कि उनके कामों की तुलना उनके पिछले ही कामों से होगी और इसके लिए उन्हें दुनिया व अपने देश के सामने अपने कामों की बड़ी रेखाएं खींचनी होंगी ताकि पिछले कार्यकाल की रेखाएं खुद ब खुद छोटी हो जाएं। मोहनलाल शर्मा, बीबीसी।
दुनिया जहान के बारे में लिखिएगा अपनी राय। और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल उर्फ प्रचंड ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ब्रिटेन की गृहमंत्री एम्बर रड ने इस बात की आशंका जताई है कि मैनचेस्टर में आत्मघाती हमला करने वाले एक से अधिक व्यक्ति रहे होंगे। एशियाई देश ताइवान की सबसे बड़ी अदालत ने समलैंगिकों की शादी के पक्ष में फैसला सुनाया है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की रफ्तार आने वाले वर्षों में सुस्त पड़ सकती है। इस आशंका से अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडी ने चीन की क्रेडिट रेटिंग कम कर दी है। चीन के दो नागरिकों को पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से अगवा किया गया है। बीबीसी समाचार।
इसी के साथ दिनभर की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। इस कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संभाला अजित सारथी ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।